आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी काबीना ने शुमाल मशरकी रियासतों को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों के फरोग के लिए माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। गुजरात के कई हिस्सों में लगातार चौथे दिन भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश की उबूरी सरकार ने जमात इस्लामी और उसकी तलबा शाख इस्लामी छात्र शिविर पर पाबंदी मंसूख कर दी है। आज खेलों का कौमी दिन मनाया जा रहा है और 2024 के पैरालंपिक गेम्स पेरिस में शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने शुमाल मशरकी रियासतों को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों के फरोग के लिए माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। 4,136 करोड़ रुपए के अखराजात वाली मजकूरा स्कीम पर 2024-25 से 2031-32 तक अमल दरामद किया जाएगा। काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मजकूरा स्कीम के तहत तकरीबन 15,000 मेगावाट की मजमुई हाइड्रो सलाहियत का बंदोबस्त किया जाएगा।
नॉर्थ ईस्ट में करीब करीब 62,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है और देश का टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2030। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के हाइड्रो का पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो इक्विटी के लिए सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट इस प्रोजेक्ट से, इस फैसले से मिलेगा।
काबीना ने जरई बुनियादी ढांचे के फंड से मुतालिक मरकजी शोबे की स्कीम की तौसी को भी मंजूरी दी है। इससे मुल्क में जरई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा और किसानों को भी मदद मिलेगी। ये फंड 2020 में 1,00,000 करोड़ रुपए की बुनियादी रकम के साथ कायम किया गया था ताकि किसानों को हमजहत माली मदद फराहम की जा सके। मरकजी काबीना ने मुल्क के सनती मंजरनामे की काया पलट के लिए 12 नए ग्रीन फील्ड सनती स्मार्ट सिटीज को भी मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों से 10 लाख बराह रास्त और 30 लाख बिलवास्ता मुलाजिमतें दस्तियाब होंगी। इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने भारतीय रेलवेज की 2 नई लाइनों और कई लाइनों वाले एक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है जिस पर 6,456 करोड़ रूपये लागत आने का तखमीना लगाया गया है। जनाब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन प्रोजेक्टों से कनेक्टिविटी फराहम हो सकेगी, सफर करने में सहूलत होगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम से कम की जा सकेगी, तेल की दरामदात कम हो सकेंगी और कार्बन का इखराज भी कम हो जाएगा।
पहला प्रोजेक्ट है जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल, 121 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ये और 2,170 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। सेकंड प्रोजेक्ट है सरडेगा जो उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो कनेक्ट होता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट भालूमुड़ा, 1,360 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा और 25 लाख मैंडेज इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। थर्ड प्रोजेक्ट है बरगढ़ से नुआपड़ा, ये उड़ीसा में है, 2,926 करोड़ का और 47 लाख मैंडेज इससे जनरेट हो।
मरकजी काबीना ने 730 प्राइवेट एफएम चैनल की ई नीलामी की तजवीज को भी मंजूर कर लिया है जो 234 नए शहरों में होंगे। जनाब वैष्णव ने कहा कि मस्कुरा प्रोजेक्ट के तहत मुकामी फनकारों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी।
करीब 234 सिटीज है जहां पे अभी भी प्राइवेट एफएम रेडियो नहीं है, 234 सिटीज जिनमें 730 चैनल्स को एक्सपैंड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसमें रेडियो इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको भी सॉल्व किया गया है, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के हिसाब से और लोकल टैलेंट पे फोकस करते हुए प्रोजेक्ट।
बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के महकमे के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने बड़ी बंदरगाहों के कारकुनों की उजरतों के ढांचे पर नजरेसानी की मंजूरी दे दी है। उजरतों के मामले से मुतालिक सहफरीकी कमेटी और इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के दरमियान एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं जिसका मकसद उजरतों के ढांचे पर नजरेसानी करना और पेंशन के फायदों समेत काम करने की दीगर शराइत और हालात पर तवज्जो मरकूज करना है। मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने के बाद जनाब सोनोवाल ने कहा कि ये बंदरगाहों के कारकुनों के लिए मुनसिफाना और मसावियाना मौकों को यकीनी बनाने की समते एक अहम कदम है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत 25 सितंबर को गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, राजौरी, पुंछ और रियासी अजला के 26 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है। कागजात की जांच पड़ताल अगले रोज की जाएगी। उम्मीदवार 9 सितंबर तक नामजदगी के कागजात वापस ले सकते हैं, जबकि पोलिंग 25 सितंबर को होगी। झारखंड के साबिक वजीर आला चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन हुकूमत में वजीर के ओहदे से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम के सदर शिबू सोरेन को तहरीर किए गए एक मुरासले में उन्होंने कहा कि पार्टी के कामकाज में तरीकेकार और पॉलिसियों ने उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जनाब सोरेन के पास आला तालीम और तकनीकी तालीम के कलमदानों के अलावा आबी वसाइल के महकमे का कलमदान भी था। चंपई सोरेन ने, जिनका बीजेपी में शामिल होने का प्रोग्राम है, सरायकेला हलके के एमएलए की हैसियत से भी इस्तीफा दे दिया है। जनाब सोरेन ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का उनका फैसला झारखंड के मफाद में है।
जो भी हम निर्णय लिया है झारखंड के हित में लिया है, आगे हम बताते जाएंगे। जो भी निर्णय है बढ़िया लिया है। हम संघर्ष की देखती हूँ, किसी तरह से हम घबराते नहीं है।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में मशरकी बहरी कमान का दौरा करने वाले हैं। अपने इस दौरे में जनाब राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में बहरिया के अड्डे पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और मशरकी बहरी कमान के आला ओहदेदारों के साथ गुफ्तगू करेंगे और बहरिया की जारी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। वजीर दिफा आज सहपहर विशाखापट्टनम से केरला में तिरुवनंतपुरम जाएंगे। बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अफसर राजविंदर सिंह भट्टी को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। 1990 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर दिलजीत सिंह चौधरी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के तौर पर मुकर्रर किया गया है। जनाब चौधरी फिलहाल सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के डायरेक्टर जनरल के तौर पर काम कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने कोलकाता अब्रोरेजी और कत्ल मामले के सिलसिले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष की मेंबरशिप को मुअत्तल कर दिया है। डॉ संदीप घोष आईएमए कोलकाता ब्रांच के नायब सदर थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में आज लगातार चौथे दिन शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। सौराष्ट्र बिलखसूस देवभूमि द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और कच्छ जिले के मुख्तलिफ अजला में पिछले 24 घंटे के दौरान बहुत शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि वस्ती गुजरात बिलखसूस वडोदरा के सैलाब से मुतासर खितों में बारिश की शिद्दत में कमी आ गई है, लेकिन बहुत से इलाके अब भी जेर आब हैं और इमदादी और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि पिछले 4 रोज के दौरान रियासत में बारिश से वाबस्ता वाकयात में कम से कम 25 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
पिछले 24 घंटे में देवभूमि द्वारका जिले में दूर दूर तक तेज बारिश हुई है। जिले के भनवाड़ इलाके में सबसे ज्यादा 10 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कल्याणपुर, द्वारका और खंबालिया तहसील में 8 इंच से ज्यादा बारिश हुई। सैलाब से मुतासर इलाकों से कल 17,000 से ज्यादा लोगों को बाहर लाया गया है। सिर्फ वडोदरा शहर से ही 5,000 से ज्यादा लोगों को दीगर मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंचने के तनाजुर में वडोदरा में पानी में घिरे हुए तकरीबन 1,200 अफराद को बचा लिया गया है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
बिहार में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन है। कई मुकामात पर दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। इनमें गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा शामिल हैं। खगड़िया, भागलपुर और कटिहार के कुछ और इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मौसमियात महकमे ने अगले 24 घंटे के दौरान शुमाली बिहार के कई हिस्सों में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज राजस्थान, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि आज शुमाली और वस्ती खलीज बंगाल से मुत्तसिल इलाके में हवा के कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान है और तवक्को है कि अगले 24 घंटे के दौरान ये जुनूबी ओडिशा और शुमाली आंध्र प्रदेश के साहिल की तरफ शुमाल मगरिब में आगे बढ़ जाएगा। आईएमडी ने माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वह कल तक शुमाल मशरकी اور مشرقی وسطی بحیرہ عرب سے متصل گجرات اور شمالی مہاراشٹر کے ساحل پر مچھلیاں پکڑنے نہ جائیں۔ دلی اور آس پاس کے بہت سے علاقوں میں رات بھر اوسط سے شدید بارش ہوئی ہے۔ بارش کی وجہ سے مختلف علاقوں میں پانی بھرنے سے ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں پروفیسر محمد یونس کی زیر قیادت عبوری سرکار نے جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ شاخ اسلامی چھاتر شبیر پر عائد پابندی ہٹا لی ہے۔ وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس کے مطابق مذکورہ فیصلے کا اطلاق فوری طور پر ہو گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے تعلق سے مذکورہ تنظیم کے خلاف کوئی مخصوص شواہد نہیں ہیں۔ اس سے پہلے اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عوامی لیگ کی زیر قیادت سابقہ سرکار نے 2009 کے دہشت گردی مخالف ایکٹ کے تحت جماعت اسلامی، چھاتر شبیر اور اس سے وابستہ سبھی تنظیموں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ آج کھیلوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ ہاکی کے ممتاز کھلاڑی میجر دھیان چند کے یوم پیدائش کی یاد میں یہ دن ہر سال 29 اگست کو منایا جاتا ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر کم از کم ایک گھنٹے کسی بھی ایسے کھیل میں حصہ لیں جو گھر سے باہر کھیلا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پہ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ آؤٹ ڈور اسپورٹس میں لوگوں کے شامل ہونے سے فٹ انڈیا موومنٹ کو آگے لے جانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کے اس نظریے سے ملک کو کھیلوں کی سمت میں بڑھنے میں رہنمائی حاصل ہوگی۔ کھیلے گا انڈیا تبھی تو کھلے گا انڈیا۔
29 اگست کے دن ایک گھنٹے کے لیے اپنے جس کھیلوں میں روچی ہو اس آؤٹ ڈور گیمز کھیلے اور اپنے سوئم کو فٹ رکھے۔ آپ سب لوگوں کو میرا آہوان ہے اور فٹ انڈیا کو آپ پروموٹ کریں گے۔
پیرالمپک گیمز 2024 کا باضابطہ افتتاح پیرس میں ایک شاندار افتتاحی تقریب کے ساتھ ہوا۔ فرانس کے صدر ایمینول میکرون نے ایک رنگا رنگ تقریب کے دوران ان کھیلوں کا اعلان کیا۔ 167 ممالک کی نمائندگی کرنے والے مجموعی طور پر 4000 پیرالمپئن نے چیمپ سے ایلیسیز سے پلیس ڈیلا کانکارڈ تک مارچ کیا۔ ٹوکیو 2020 میں نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے سنیت انتل اور عالمی ریکارڈ یافتہ ٹیبل ٹینس کھلاڑی بھاگشری جادھو نے بھارتی دستے کی قیادت کی۔ کھیلوں کے اس ایڈیشن میں 84 بھارتی پیرا ایتھلیٹ اپنے کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ پیرالمپک تاریخ میں یہ بھارت کا سب سے بڑا دستہ ہے۔ بھارت طے شدہ 22 کھیلوں میں سے 12 میں مقابلہ کرے گا۔ کرشنا ناگر کا مقصد بیڈمنٹن میں مردوں کے سنگل ٹائٹل کا دفاع کرنا ہوگا، جبکہ اونی لیکھرا اور منیش نروال نشانے بازی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پیرس پیرالمپکس 2024 کے بھارتی دستے کو ملک کے 140 کروڑ افراد اپنی نئے خواہشات پیش کر رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ہر ایتھلیٹس کا حوصلہ اور عزم پورے ملک کے لیے تحریک کا ایک وسیلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنی کامیابی کے لیے کوشاں ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔
شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو پہلی بڑی خبر بنایا ہے۔ روزنامہ ملاپ اور پرتاپ نے پی ایم جن دھن یوجنا کے 10 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم کی جانب سے تمام مستفیدین کو مبارکباد دیے جانے کی خبر کو پہلی بڑی خبر بنایا ہے۔ ساتھ ہی وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتارمن کا یہ بیان بھی خصوصیت کے ساتھ نمایاں کیا ہے کہ جن دھن یوجنا نے غریبوں کو اقتصادی دھارے میں شامل کیا۔ روزنامہ پرتاپ کی ایک خبر کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی اقوام متحدہ کے 79ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اجلاس اگلے مہینے ہوگا۔ ملک بھر میں شدید بارش کا الرٹ جاری رہنے کی خبر بھی مختلف اخباروں میں نمایاں ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس، ملاپ، انقلاب اور راشٹریہ سہارا سمیت تقریباً سبھی اخباروں نے بارش اور سیلاب کی خبروں کو پیش کیا ہے۔
خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے شمال مشرقی ریاستوں کو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹوں کے فروغ کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ گجرات کے کئی حصوں میں لگاتار چوتھے دن بھی شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری سرکار نے جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ شاخ اسلامی چھاتر شبیر پر پابندی منسوخ کر دی ہے۔ آج کھیلوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے اور 2024 کے پیرالمپک گیمز پیرس میں شاندار افتتاحی تقریب کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔